چلے یہ پرندے حوصلے اب جوان ہے اڑ چلے یہ پرندے حوصلے اب جوان ہے نہ رکے گا یہ کاروان دور ہم سے نہیں اب آسمان ہے قدم سے قدم مل چلے آپ ہیں ساتھ میں جب چلے ہے امنگ ہے اللہ ایک نئی سوچ نیا وشوا ایک نئی سوچ نیا وشوا
اس دور میں زمانے کے انداز نرالے ہیں اس دور میں زمانے کے انداز نرالے ہیں ذہنوں میں اندھیرے ہیں سڑکوں پر اجالے ہیں لیکن ذہنوں میں بھی اجالے ہوں گے اور ہو رہے ہیں کیونکہ ہر سپتاہ اس کارکرم کے ذریعے ہمارے سامنے کچھ ایسی سچائیاں آ رہی ہیں جن سے ہم انبھگ تھے انجان تھے نمسکار میں ہوں امت وادوا نئی سوچ نیا وشواس اس کارکرم میں آپ کا سواگت کرتا ہوں दोस्तों अभी तक हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी अनेक भ्रांतियों और शंकाओं का समाधान प्राप्त किया है और इस संस्था के प्रति हमारी एक नई सोच नया विश्वास भी जागृत हुआ है लेकिन अभी भी ऐसे अनेक प्रश्न इस संस्था से जुड़े हुए जिनके उत्तर पाना अभी बाकी है आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि इस संस्था की मुख्य धारणा रही है और जिसकी वजह से इस संस्था को तमाम सामाजिक प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा है इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर सचिन को लता जी मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पिछली कड़ियों में आपने खान पान की शुद्धता और अन्न का मन पर प्रभाव इन विषयों पर बड़े विस्तार से हमें समझाया और मैं समझता हूं हमारे दर्शक भी संतुष्ट होंगे आपके उत्तरों से लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो काफी विवादित मुद्दा है हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन को चार चरणों में बांटा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम और प्रत्येक चरण का अपना एक अलग महत्व भी बताया गया है समाज में कई संस्थाएं हैं जो कि ब्रह्मचर्य की विशेषता पर बल देती हैं लेकिन जब ब्रह्मा कुमारीज की बात आती है तो आपके यहां आने वाले फॉलोअर्स को गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य अपनाने को कहा जाता है और भाई बहन बना दिया जाता है इस पर आप क्या कहेंगे
देखिए जैसे आपने कहा कि एक विवादित मुद्दा है मैं तो कहूंगा जैसे कि यह संस्था के ऊपर एक टैग लगाया गया है जब से यह संस्था चालू हुई है कि यहां जो भी आता है उनको भाई बहन बना दिया जाता है देखिए इस बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्था या कोई भी कार्य जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है तीन स्टेजेस से क्रॉस करता है सबसे पहला होता है उपहास कोई भी नया कार्य जब चालू होता है दूसरा होता है अपोजिशन विरोध और तीसरा होता है स्वीकृति तो वही बात इस संस्था पर भी लागू है कि सबसे पहले उपहास निंदा उसके बाद में विरोध बहुत भयंकर विरोध और उसके बाद में स्वीकृति अभी यहां मुद्दा है ब्रह्मचर्य आश्रम का आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में चार आश्रमों का वर्णन है अभी इससे पहले कि हम ये चार आश्रम क्या ये देखें हमको आश्रम शब्द को समझना पड़ेगा आश्रम शब्द इटसेल्फ सिग्निफाइज पवित्रता प्यूरिटी तो सबसे पहला आश्रम जो कहा हुआ है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम कि जिसमें ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति उस समय विद्यार्जन करना होता है उसे इसके लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है तो पहले 25 साल कहा हुआ है उसके लिए परंतु केवल 25 साल तक ही नहीं है वो अगर उसके और आगे जाए शास्त्रों की अगर गहराई में जाए तो वहां तो यहां तक लिखा हुआ है कि पहले तो कहा है पहले 12 साल, फिर कहा है मैक्सिमम अगर हो सके तो 25, अगर हो सके तो 42, अगर हो सके तो 44, और यदि कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहता है तो वो तो सर्वोत्तम है। अभी जो दूसरा आश्रम कहा हुआ है वो है गृहस्थ आश्रम
जी।
कि पहले आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपने अंदर शक्ति भरे, अपने अंदर ज्ञान भरे, नीति का ज्ञान ले, धर्म का ज्ञान ले, जीवन में संयम का क्या महत्व है इसको समझे, उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, उसके बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। शास्त्रों में तो यहां तक कहा हुआ है कि यदि कोई चाहे तो सीधा ब्रह्मचार्य आश्रम से संन्यास आश्रम में सीधा जा सकता है
जी।
अभी बात हमारी चल रही है गृहस्थ आश्रम की, तो ये जो आरोप है जो आपने कहा कि यहाँ बहन भाई बनाते हैं, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये बहन भाई बनाते मतलब इसको आप किस रीति से क्या कहना चाहते हैं? मतलब
जी गृहस्थ में यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता
मतलब
है,
आप कहना चाहते हैं कि सेलिबसी, मतलब यू कम टू स्ट्रेट की वेदर कि पति पत्नी भी सेलिब्रेट रहे या ना रहे,
रहे और इस तरह की दृष्टि अपनाए ऐसा बोला जाता है
जी। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्मचर्य का क्यों इतना महत्व है
जी।
अभी देखो आप अगर संसार की ओर एक नजर डालो तो जितने भी पाप कर्म, जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं उन सब का कहीं ना कहीं एक कारण काम विकारी कारण जितने भी हो रहे हैं। अभी ये काम विकार ऐसा है कि सबसे ज्यादा देहभान इस विकार की वजह से आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस इसके इस वजह से आता है ना। अगर हम इस समय को देखें, ये समय जो चल रहा है कि जिस समय इस धरती पर परमात्मा स्वयं आकर राजयोग का ज्ञान दे रहा है
जी,
और उसकी सबसे पहली आज्ञा जो है वो है पवित्र बनो, योगी बनो
जी।
और दूसरी एक बात आप जो कह रहे हैं पति और पत्नी, क्या पति और पत्नी के बीच केवल काम का ही संबंध है? क्या इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा संबंध नहीं है? शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है एक पवित्र नारी, सारे तीर्थ उसके चरणों में है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि पति और पत्नी का संबंध इतना शुद्ध और इतना पवित्र है कि दोनों एक दूसरे की सदगति करें उसमें
जी।
यहां तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है अगर विपदा का समय है तो स्त्री जैसे उसमें माता है पति की, अगर वो कोई यज्ञ है तो स्त्री उसमें पिता है। यहां तक शास्त्रों में स्त्री की महिमा का गायन है, स्त्री गुरु है
जी।
तो स्त्री और पुरुष का संबंध केवल काम विकार के लिए नहीं है, दोनों जैसे कोई एक रथ है, एक ही रथ के जैसे दो पहिए हैं, दोनों को साथ साथ चलना है। तो ये जो बहन और भाई वाली बात है, हम भगवान के सामने जाते हैं और क्या महिमा करते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हम कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु तुम ही माँ हो तुम ही पिता हो, मतलब हम सब उसके कौन हुए, सब बच्चे हुए
जी।
वास्तव में देखा जाए तो स्त्री पुरुष का ये जो संबंध है ये केवल विकार के लिए नहीं है, वरन दोनों एक दूसरे की मदद करे, अध्यात्म के मार्ग पर चले। हमें तो कई ऐसे उदाहरण आप अगर इस संस्था में ही देखो तो ऐसे हमको कई सारे कपल मिल जाएंगे कि जो कि साथ में रहते हैं और जीवन में सुख शांति है। अगर संबंध केवल काम विकार पर आधारित होता है तो आप संसार की हालत देख रहे हो क्या होता है उसमें, जो काम का जो संबंध है और एक प्रेम, प्रेम होना एक दो में और एक दो में केवल काम का संबंध होना, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि प्रेम तो एक दिव्य अनुभूति है, एक दिव्य अभिव्यक्ति है, परमात्मा को प्रेम का सागर कहा जाता है, जबकि काम तो एक निकृष्ट कर्म है। अगर दो व्यक्तियों में प्रेम है तो ही वो लंबा समय साथ चल सकते हैं, अगर उनका संबंध केवल काम पर आधारित है
जी।
तो उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, धीरे धीरे ऐसा आ जाता है, ऐसा समय आता है कि दोनों के हृदय एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, असंतुष्टता आ जाती है जीवन में, हलचल आ जाती है, क्योंकि एक विकार आने से फिर बाकी सारे ही विकार आ जाते हैं। अभी देखो भगवान ने आकर इस संसार में क्या कहा कि बच्चे तुमको निर्विकारी बनना है, जो कि हमारा परम पिता है वो पवित्रता का सागर है, ये उसका आदेश है इस समय
जी।
अब तक जो सृष्टि की हालत है इस हालत के बीच अगर हम देखें तो परमात्मा जब स्वयं आता है तो ये परमात्मा का आदेश है, ये कोई मनुष्य का आदेश नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई धर्म गुरु नहीं कह रहा है, यहां तो स्वयं भगवान आकर हमसे कह रहा है कि बच्चे तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो कुमार हो, कुमारी हो, कोई भी हो, ये नियम सभी के लिए है। क्यों ऐसा कहा? उसका भी जैसे मैंने कहा कि संसार में चारों ओर काम की अग्नि है। आप अगर न्यूज़पेपर खोलो तो आपको क्या दिखेगा? वही सब दिखता है, दुष्कर्म और कुकर्म
जी।
इसी तरह के अपराध ज्यादा है। अगर वो नहीं होता, क्योंकि काम जब है तो उसके साथ फिर बाकी सारी चीजें जो जुड़ी हुई है हिंसा से लेके, तो सब कुछ सब उसमें आ जाता है। हिंसा आएगी, उसके बाद में व्यक्ति के अंदर और भी बहुत धन इकट्ठा करने की इच्छा होगी, उससे वजह से और उसका एक जैसे कि एक कुचक्र है, फिर वो अनीति का मार्ग अपनाएगा। अनीति के मार्ग में जब जाएगा तो उसको फिर रिलैक्सेशन के लिए और काम की आवश्यकता है। तो ये जैसे कि एक कुचक्र में व्यक्ति फंसा हुआ, इस चक्र को, ये विशेष साइकिल, इसको तोड़ने के लिए परमात्मा की आज्ञा है कि तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक तो ये बात, दूसरा जैसे मैंने कहा परमात्मा पवित्रता का सागर है। ये समय है, ये वेला है उससे मिलन मनाने की
जी।
अगर वो पवित्रता का सागर है तो हमें भी उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। जैसे मैं बाइबल का एक स्टेटमेंट कहूंगा जिसमें कहा हुआ है, बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे वो परफेक्ट है, पवित्र है, गॉड इज स्पिरिट, ही हु शैल वर्कशिप गॉड शैल वर्कशिप इन स्पिरिट। मतलब वो अगर परमात्मा है तो हमको भी आत्माभिमानी ही बनना पड़ेगा। और देहभान की सर्वोच्च अवस्था है काम विकार। सबसे ज्यादा देहभान की आवश्यकता होती है काम विकार में, क्रोध में इतनी नहीं, लोभ में उतनी नहीं, परंतु काम, शुरुआत भी हमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मतलब सबसे फर्स्ट दर्जे पर हमने किसको रखा है? काम को रखा हुआ है। काम है तो क्रोध आएगा, जैसे गीता में कहा है, काम आता है फिर क्रोध, फिर बुद्धिनाश, फिर सर्वनाश
जी।
तो ये जो बात है इसको हमको और गहराई से समझना पड़ेगा कि ये समय चल रहा है भगवान के अवतरण का, जिसमें हमें सबको पवित्र बनना है, पावन बनना है, और हमारा जो उससे संबंध है, अविनाशी संबंध है, वो पुनः स्थापित करना है। इसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत 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 आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य को कहा गया सर्वश्रेष्ठ धर्म है
जी।
ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ तप है। ब्रह्मचर्य अगर है तो वही व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है। ब्रह्मचर्य से बड़ा इस संसार में और कोई तप नहीं। यहां तक कहा हुआ है कि अगर चारों वेद किसी ने पढ़े हुए और कोई व्यक्ति केवल ब्रह्मचारी है तो ये जो पलड़ा है ये भारी होगा ब्रह्मचर्य वाला
जी। आपकी बातों को डॉक्टर सचिन, जब हम विवेकपूर्ण रीति से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य की महिमा है। और आश्रम शब्द जैसे आपने समझाया कि पवित्रता का ही प्रतीक है, मगर कहीं ना कहीं हमसे समझने में भूल हुई है और हमने केवल अपने काम की बात, अपने मतलब की
मैं
बात।
इसमें और एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है ये ऐसा है तो why not try it out? It is a thing not to be just told. It is something to be practiced. आप उसको अनुभव करके देखो, आप देखोगे कि कुछ दिन ही ब्रह्मचर्य का अगर कोई पालन करता है तो एक असीमित सी ऊर्जा उसके अंदर आने लगती है। जैसे कि जो एनर्जी सबसे ज्यादा हमारी जो लीकेज हो रही थी विकार से होती है, अगर उस लीकेज को वहां रोक दिया जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है
जी।
तो ये एक तो इट इज जस्ट समथिंग विच यू शुड ट्राई इट आउट, रादर देन जो लोग इसमें हजार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लोग लॉर्ड ऑफ हंड्रेड आर्गुमेंट्स, यस एंड नो, यस एंड नो के, बट द क्वेश्चन इज यू ट्राई इट आउट एंड सी फॉर योरसेल्फ।
दोस्तों, ब्रह्मचर्य के उदाहरण तो हमारे देश में भी अनेकों मिल जाएंगे। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भी पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उसके बाद वे देश को आजाद करने के आंदोलन में लग गए, उन्हें महात्मा की उपाधि मिली और वे राष्ट्रपिता बन गए। श्री रामकृष्ण परमहंस मां शारदा के साथ विवाहित होते हुए भी उन दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन किया। तो ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किससे प्रेरणा ले सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत को एक बार ट्राई करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम लोगों के कहने और सुनने में यकीन।
जैसे कि आपने याद किया श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जब उनका विवाह हुआ और बाद में जब श्री शारदा जी उनके पास आई तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा था, क्या तुम मुझे पतित बनाने आई हो, क्या तुम मुझे अधोगति में लेके जाने के लिए आई हो? तो उनका बहुत अच्छा उत्तर था कि नहीं, मैं तो आपको अध्यात्म, आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो आध्यात्मिक राह पर आप जो निकल पड़े हो, उस राह में आपकी सहयोगी बनने आई हूं, आपकी मदद करने आई हूं। और महात्मा गांधी जी के बारे में भी कहते हैं कि 1900 से उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के लिए सोचना चालू किया, एंड ही टुक द ओथ, एक्चुअल अल्टीमेट ओथ ऑन 1906। मतलब 6 साल लगे उनको, परंतु जो एक बार ले लिया फिर वो कभी नहीं टूटी। तो ये जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसी के कारण जैसे आपने कहा वो राष्ट्रपिता बन गए।
डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के भी इस से संबंधित अनेक प्रश्न हो सकते हैं, आइए कुछ प्रश्न इनके सुन लेते हैं।
जी
नमस्ते भैया, मेरा नाम शाश्वत कुमार हुआ, मैं यूपी बलिया से आया हूँ। मेरा यह सवाल है कि ब्रह्मचर्य के लिए जो बुजुर्गों के लिए कहा जाता है वो तो सही है, पर हम युवाओं को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करना, ये कहाँ तक सही है?
जी बहुत ही सटीक सवाल है। अभी ये जो युवा वर्ग है, युवा को राष्ट्र का धन कहा जाता है।
हाँ जी,
युवा धन जिसको कहते हैं, एक बहुत सुंदर शब्द है ये हिंदी का, युवा धन। किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसकी युवा होती है। तो ये जो युवा है, अगर हम एक नजर दौड़ाए आज के समाज पर, आज का जो परिवेश है उसके ऊपर, तो आप क्या देखेंगे, युवा क्या कर रहा है? अगर आप देखो तो आप देखो पाओगे कि जैसे कि वो एक ही अपनी ही उसका जो स्वभाव है, उसको आजादी चाहिए सबसे पहले तो
जी,
उसको किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं है।
हाँ।
पुरानी जो रीति रिवाज रसम वो उसे स्वीकार नहीं है, उसे आजादी चाहिए
जी।
वो किसी को किसी भी बात के लिए ही डजंट वांट टू रिमेन अकाउंटेबल आंसरेबल, ही वांट्स कंप्लीट फ्रीडम। परंतु ये जो फ्रीडम की उसकी जो चाह है, कई मायने में सही भी है, परंतु उस फ्रीडम की वजह से वो आज कहां आ पहुंचा है। आप आज अगर देखो युवा वर्ग को, तो मैं आपको हॉस्पिटल की बात बताऊंगा कि वहां पर हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं। अभी देखिए माउंट अबू जो है हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में सैटरडे संडे लोग घूमने आते हैं।
हाँ जी,
तो कितनी बार ऐसे हमने देखे हैं नशे में लत हॉस्पिटल में आते हैं। वहां आते हैं दो दिन के लिए, इतनी पी लेते हैं कि उनके दोस्त वहां हमारे पास लेके आते हैं आधी रात को
जी।
हम पूछे तो किससे पूछे, मेडिकल साइंस में हिस्ट्री पूछना होती कि भाई क्या हुआ मरीज को, तो जो दोस्त लोग हैं वो भी पिए हुए हैं। ऐसे केसेस हमको कितने देखने को मिलते हैं। तो आज का युवा जो है व्यसनाधीन है।
हाँ जी,
बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सारे ही व्यसन उसको है। कहीं कहीं तो हालत इतनी खराब है, हमारे पास माउंट में इतने उनके पिता आते हैं और रोते हैं हमारे सामने आकर, गिड़गिड़ाते हैं कि क्या करे, कैसे भी करके छुड़ाओ इसकी दारू। पत्नी छोटे बच्चे कितने तो ऐसे केसेस है कि जहां तलाक हो गया है। दूसरा आप अगर ले लो कि जो भी युवा वर्ग है उनको, जैसे कि फैशन के घोड़े पर सवार है सब, जो भी देखते हैं बस वो करना है उनको, नई 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 फैशन, उनको किसी चीज की रोक टोक पसंद नहीं है। अगर वो कहीं जा रहा है तो आप उसको पूछ नहीं सकते घर वाले कहां जा रहे कब आओगे, उनको बहुत बुरा लगता है या बड़ा ही अलग प्रकार का आंसर वो देंगे। रात में जागना, पार्टीज में जाना, ये सब व्यसन करना, और आप जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर आप खोलोगे तो उसमें कितने ही ऐसे उदाहरण है काम विकार से संबंधित दुष्कर्म है। अभी जो दिल्ली का केस हुआ था, उन सारे अपराधियों ने स्वीकार किया, उन्होंने जो कुछ किया वो नशे की हालत में किया
जी।
तो युवा दिशाहीन हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा है कहां जाना है। वो इन सब जो चीजें, दूसरी है इंटरनेट, सारी साइट्स जैसे खुली है, एक क्लिक दबाओ और कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति
जी। जी
इंटरनेट टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ अवेलेबल है। जिस संघ में युवा रहता है उस संघ को देखो जरा, वो किस संघ में रहता है बचपन से ही। अगर बहुत अच्छे माँ बाप है उसे अच्छे संघ में रखे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा बहुत सब केसेस में नहीं हो सकता है
जी।
युवा तो जैसे, और इसको सिखाएगा भी कौन, जो शिक्षक है माउंट में बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं, वो हमको कहते हैं कि भाई बहुत टेंशन में रहते हैं, एक दो तीन ऐसे हैं कि उनको बीपी हमेशा ही ज्यादा रहता है, दो तीन गोलियां चालू। मैं उनसे पूछता हूं भाई क्या हुआ, इतना क्यों बीपी हाई रहता है? वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की वजह से, हम उनको डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो वो हमारा अपमान कर देते हैं। ये हालत है आज बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे। दूसरी बात देखो तो आजकल 12 साल की बच्ची 13 साल की बच्ची बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कब जाते हैं कब आते हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो, स्वभाव चिड़चिड़ा। युवा जो है बेरोजगार, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर लेता है पर उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो आत्महत्या की केसेस, सुसाइडल, एक सैटरडे टाइम्स के न्यूज के हिसाब से तो हर 7 मिनटों में एक व्यक्ति, एक युवा प्रयत्न कर रहा है सुसाइड का, और उसमें से हर 7वें मिनट में एक सुसाइड हो रही है
जी।
ये क्यों हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो आप अगर देखेंगे तो आज का युवा जो है, एक समय था हम कहते थे कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम, आजकल आप इसके ऊपर तो बड़े विरोध करते हैं, वो धर्म की बातों के ऊपर या ब्रह्मचर्य के ऊपर। शादी करना चाहते हैं पर शादी के पहले ये जो ब्रह्मचर्य है वो कोई फॉलो नहीं करना चाहता है, सीधा गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है
जी।
तो ये ऐसे कितने ही केसेस है, कितने ही केसेस है। जो आतंकवादी है उनको देखो, कौन है वो, किसने बनाया उनको, किसने सिखाया उनको। तो आप देखेंगे कि ये सभी के बीच में जो चरित्र का पतन हो रहा है
जी।
युवक का, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं काम विकार है। तो हमारा जो लक्ष्य है, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे केवल 100 ब्रह्मचारी दे दो मैं एंड द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, 100 सच एंड द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और आज इस संस्था में अगर आप देखो तो हजारों भाई बहने ब्रह्मचारी है और कितनी सहजता से पालन कर रहे हैं। इसके लिए ये कहना एकदम अनुचित है कि भाई युवा वर्ग को ब्रह्मचार्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। एक्चुअली दे आर द टारगेट,
उन्हीं को सबसे
उन्हीं के ज्यादा सब, क्योंकि जो भी अपराध हो गए। और एक फिगर आपको बताता हूं, 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के ही युवक जो है सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स की लिस्ट में जो है वो यही लोग है। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता भी उन्हीं को है
जी जी जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि चरित्र निर्माण का आधार कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य है, और यदि युवा ब्रह्मचर्य को समझ लेता है तो इसमें कोई हानि भी नहीं है।
बहुत अच्छी बात कही आपने, युवा जो है उसमें एक यौवन की जो शक्ति है
जी,
उसके अंदर जो क्रियाशीलता होती है, जो डायनामिज्म जिसमें उसमें जो होता है, वो अगर उसको अगर सही दिशा अगर मिल जाए तो वो न जाने क्या क्या, कितने अच्छे अच्छे कार्य कर डाले। जैसे एक विवेकानंद ने सारे विश्व को हिला दिया
जी
ब्रह्मचर्य की शक्ति से। ब्रह्मचर्य की शक्ति जितनी अंदर भरती जाएगी, युवाओं के क्रिया शक्ति, उनकी जो क्रिएटिविटी पावर है, रचनात्मक सृजनात्मक शक्ति है, वो भी बढ़ेगी। इसी के आधार से वो न जाने अपने अपने फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए युवा अगर हमारा धन है तो इस धन की रक्षा करना, उन्हें चरित्रवान बनाना, उन्हें इस अध्यात्म के राह पर प्रेरित करना, ये हमारा परम लक्ष्य है
जी,
और कर्तव्य है
जी। दोस्तों शायद हमने इस बात को कभी समझा नहीं होगा कि चरित्र धन का आधार भी ब्रह्मचर्य है। हम सब स्वामी विवेकानंद जी को पसंद करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन किस आधार पर विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद बन गए, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए, उसका आधार ब्रह्मचर्य ही तो था। पर डॉक्टर साहब यही एक मेरे जहन में प्रश्न आ रहा है, वो ये कि एक तरफ हम युवाओं को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देना चाह रहे हैं, दूसरी ओर हम गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कर रहे हैं
जी।
तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि कहीं इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए, और फिर इस सृष्टि की आगे वृद्धि कैसे होगी
जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सभी ब्रह्मचारी बन जाए तो यह सृष्टि कैसे चलेगी
जी,
सीधा सीधा यही प्रश्न है ना।
हाँ जी।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस संसार में कई लोग डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं,
हाँ जी,
या फिर इंजीनियर बनते हैं। जब वो इंजीनियर बनने का संकल्प करते हैं या डॉक्टर बनने का संकल्प करते हैं या उसके आधार से जो कुछ प्रोसेस होती है उसमें जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर सारी दुनिया इंजीनियर बन जाए तो मेरा क्या होगा। डॉक्टर बनते समय कभी कोई ये सोचता है कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊं तो सारी दुनिया ही डॉक्टर बन जाए तो बन गई तो क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है कि मैं अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं तो सारी दुनिया ही ब्रह्मचारी बन जाए तो सृष्टि का क्या होगा।
हाँ जी।
तो ये प्रश्न यहाँ क्यों। फिर दूसरी एक बात, आपका ये जो प्रश्न है या फिर सभी दर्शकों का ये प्रश्न है कि ये सृष्टि कैसे चलेगी, एक नजर इस विहंगम दृष्टि सृष्टि पर डाले कि क्या ये सृष्टि सही में चल रही है। आज आप कहीं पर भी जाओ संसार में, अस्पतालों में जाओ तो वहां पे मरीज भरे पड़े हैं, आप पागलखानों में जाओ तो पागल भरे पड़े हैं, आप किसी भी दफ्तर में जाओ तो वहां पर बेरोजगारों की जैसे लाइन लगी हुई है
जी।
आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ पूरा प्लेटफॉर्म फुल है, जहां जाओ किसी भी गृहस्थी में जाओ ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे दुख अशांति नहीं है। सारा सृष्टि इस समय जैसे कि दुख अशांति में डूबी हुई है, जैसे कहते ना कि जैसे ये सृष्टि को जैसे ऑक्सीजन पर है इस समय, इस सृष्टि की जैसे कि एक पैर जैसे कब्र में है इस समय, ये सृष्टि एक्चुअली चल रही नहीं है, इसको तो धक्के से चलाया जा रहा है। ये सृष्टि में इस समय ऐसी प्राकृतिक आपदाएं और जो कुछ भी यहां हो रहा है विकारों के वजह से, मनुष्य की वृत्तियां दूषित है, मनुष्य की प्रवृत्ति, उनका जीवन विकारी है, इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि अकाले मृत्यु, बीमारी, जल्दी बुढ़ापा आना, ये सारी जो चीजें संसार में आज चल रही है, इसे देखते हुए हमको नहीं लगता है कि ये सृष्टि और ज्यादा चल सकेगी। ये सृष्टि तो चल रही नहीं है, इसको तो जैसे धक्के से कोई पकड़। अगर आप किसी गृहस्थ को देखो तो उसका जीवन ऐसा है कि वो इतना सक्षम नहीं है कि अपने एक घर को भी चला सके। मनुष्य एक असमर्थ प्राणी है इस सब समस्याओं के सामने, और हम बात कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे चलेगी। एक्चुअली सृष्टि को चलाने का कर्तव्य भगवान का है, ना कि हमारा। सृष्टि को चलाना यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इस जगत का नियंता वो है। सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि का क्या होगा, ये प्रश्न से ज्यादा हम ये सोचे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, ये चिंता छोड़कर हम अपनी ही चिंताओं में इतना डूबे हुए हैं और चिंता कर रहे हैं सृष्टि कैसे चलेगी, क्या ये प्रश्न उचित है। तो यही बात है कि भाई ये सृष्टि तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, और स्वयं भगवान इस समय आया है और वो सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहा है। और बजाय इसके कि ये पूछे कि सृष्टि कैसे चलेगी, हमें तो अपने ये जो कर्तव्य, जो परमात्मा कर्तव्य यहाँ चल रहा है, उसमें हमें और ही सहयोगी होना है।
दोस्तों, डॉक्टर सचिन जो कुछ भी बोल रहे हैं शायद हमारे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य जो कि इस संस्था की मुख्य धारणा है, जिसके प्रति हमारे मन में अनेक भ्रांतियां थी, उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर और संतोषजनक उत्तर हमें जरूर मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, समय अभाव के कारण आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है और शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के बारे में क्या क्या वर्णित है, ये सब हमने आज विस्तार पूर्वक सुना और समझा भी। इस संस्था की ये मुख्य धारणा क्यों है, ये किसका आदेश है, ये भी आज हमने जाना। मैं समझता हूं कि आज इस संस्था के प्रति जो और भ्रांतियां थी हमारे मन से दूर अवश्य हुई होंगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इसी विषय पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।